इंद्रिय छह प्रकार के न्याय दर्शन में माने गए हैं, घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन। अब इन छह इंद्रियों में से घ्राण इंद्रिय जो है वह प्रथम इंद्रिय है, तो उसका निरूपण इस पाठ में किया जाएगा। और इसी प्रकार से छह इंद्रियों के बारे में अभी ये प्रकरण चलेगा और उसमें इंद्रियों के बारे में ही बताया जाएगा। उसमें सबसे पहला जो है घ्राण इंद्रिय, उसका लक्षण किया, तत्र गंधोपलब्धि साधनम इंद्रियम घ्राणम नासाग्रवर्ती। घ्राणम माने घ्राण इंद्रियम, घ्राण इंद्रिय किसको कहते हैं, तो उसके लिए कहा कि गंधोपलब्धि साधनम और नासाग्रवर्ती, ये दो लक्षण बताए। गंधोपलब्धि साधनम में गंध तो आप जानते ही हैं, उसकी जो उपलब्धि है, गंध की उपलब्धि का मतलब गंध का प्रत्यक्ष, गंध का साक्षात्कार, तो गंध का जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसको कहते हैं गंधोपलब्धि। और उस गंध के प्रत्यक्ष अनुभव का जो साधन है, अर्थात जिसके द्वारा गंध का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उसी को कहते हैं गंधोपलब्धि साधन। तो गंधोपलब्धि साधन जो है उसका है कौन, तो घ्राण इंद्रिय। और दूसरा विशेषण इसमें लगाया नासाग्रवर्ती, नास कहते हैं नाक को और अग्रवर्ती माने आगे में रहने वाला, तो नाक के अग्रभाग में रहने वाला जो इंद्रिय हो उसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं। तो दो तरह का लक्षण यहाँ बताया गया, एक तो गंध की उपलब्धि का जो साधन हो और जो नाक के अग्रभाग में विद्यमान हो उसे हम घ्राण इंद्रिय कहते हैं। ये घ्राण इंद्रिय का लक्षण जब हम पढ़ते पढ़ाते हैं तो एक बात हमें याद आती है कि हमारे गुरुजी कहते थे ये नासाग्रवर्ती घ्राण इंद्रिय होता है, इसका उदाहरण कहते थे कि जब कभी गंध सुगंध दुर्गंध आवे तो नाक के अगले वाले भाग को उंगली से दबा देने पर जो है वह सुगंध दुगंध दुर्गंध नहीं लगता, और यही इसका प्रमाण है कि वह घ्राण इंद्रिय नासाग्रवर्ती होता है। लोग जो है रुमाल उमाल से नाक को ढक लेते हैं ना दुर्गंध आने पर, तो कहते थे कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, केवल नाक के अगले वाले भाग को उंगली से दबा देने से ही गंध लगना बंद हो जाता। तो चलिए गुरुजी को इसी बहाने हमने याद किया। तो घ्राण इंद्रिय का लक्षण हो गया गंध की उपलब्धि का साधन जो हो और नास के अग्रवर्ती भाग में विद्यमान हो उसको हम घ्राण इंद्रिय कहते हैं। आगे कहा कि तच्च पार्थिवम, वह जो घ्राण इंद्रिय होता है वह पार्थिव होता है। पार्थिव का मतलब पृथ्वी से जन्य होता है, पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। आप जानते हैं ना कि ये जो जितने भी पदार्थ हैं उसको जो है ना पांच भौतिक पदार्थ कहा जाता है, कि कुछ पदार्थ पृथ्वी से बने हुए हैं, कुछ जल से बने हुए हैं, कुछ तेज से बने हुए हैं, कुछ आकाश से बने होते हैं। तो ये जो नासा ये जो घ्राण इंद्रिय है यह पार्थिव पदार्थ है, पृथ्वी तत्व से जो है यह जन्य है। कहा कि इसमें क्या प्रमाण है कि यह घ्राण इंद्रिय पार्थिव है, तो कहा कि गंधवत्वात्, क्योंकि इसमें घ्राण इंद्रिय जो पार्थिव है वो इसलिए है क्योंकि उसमें गंधवत्व है। अब ये गंधवत्व क्या हुआ, गंध जिसमें रहता हो उसको कहते हैं गंधवान, और गंधवान में रहने वाला जो धर्म है उसे कहते हैं गंधवत्व। तो गंधवत्व धर्म जो है किसमें रहेगा, गंधवान में रहेगा, और गंधवान गंधवती कौन होती है, पृथ्वी होती है। तो इसीलिए कहा कि घ्राण इंद्रिय जो है वह पार्थिव है, और वो इसलिए पार्थिव है पृथ्वी से जन्य उसको माना जाता है क्योंकि उसमें गंधवत्व है, और जहाँ जहाँ गंधवत्व रहता है वहाँ वहाँ पार्थिवत्व रहता है। उदाहरण में दिया जैसे घटवत्, घट की तरह, जैसे घड़ा जो है उसमें भी जो है ना गंध होता है, और वह घड़ा पार्थिव होता है, माने मिट्टी से बना हुआ होता है, पृथ्वी तत्व से बना होता है। तो इसी तरह से इन्होंने बता करके आगे कहते हैं कि गंधवत्वम च गंध ग्राहकत्वात्, कहा कि अच्छा ये जो गंधवत्व आपने माना इसमें या बताया कि पार्थिव में ये घ्राणेन्द्रिय में गंधवत्व रहता है, तो घ्राणेन्द्रिय में गंधवत्व जो रहेगा माने गंध बान हो गया कौन, घ्राणेन्द्रिय, और उसमें गंधवत्व धर्म रहेगा। तो ये जो गंधवत्व धर्म मानते हैं घ्राणेन्द्रिय में वो उसका हेतु क्या है, तो आगे कहते हैं गंध ग्राहकत्वात्, क्योंकि वह घ्राणेन्द्रिय जो है वह गंध का ग्राहक है, गंध का गंध को ग्रहण कराने वाला है, गंध का वह साधन है। तो अगर हम उसमें गंधवत्व नहीं मानेंगे तो वह गंध का ग्राहक कैसे होगा, तो गंध का चूंकि वह ग्राहक है इसलिए उसमें गंधवत्व माना जाता है। जिसमें जो तत्व नहीं रहेगा वह उस तत्व का कभी ग्रहण नहीं करा सकता है, तो घ्राणेन्द्रिय में गंधवत्व रहता है इसीलिए वह गंध का ग्राहक होता है। आगे कहते हैं कि यत इंद्रियम रूपादिषु पंचसु मध्ये यम गुणम गृह्णाति तदिंद्रियम तदगुण संयुक्तम यथा चक्षु रूपक ग्राहकम रूपवत्। यत इंद्रियम, जो भी इंद्रिय है, छह प्रकार की इंद्रियां बताई गई पहले, तो जो भी इंद्रिय हैं वो रूपादिषु पंचसु मध्ये, रूप आदि जो पांच हैं उनमें से रूप आदि पांच कौन हैं, तो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। तो जो भी इंद्रिय इन रूपादि पांचों में से यम गुणम गृह्णाति, जिस गुण का ग्रहण करता है, तत इंद्रियम तद गुण संयुक्तम, वह जो इंद्रिय है वह उस गुण से संयुक्त होता है। उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, यथा चक्षु रूपक ग्राहकम रूपवत्। अब जैसे चक्षु इंद्रिय है वह किसका ग्राहक होता है, रूप का ग्राहक होता है, और रूप का ग्राहक होता है इस किस लिए होता है रूप का ग्राहक, क्योंकि उसमें रूपवत्व रहता है, अर्थात चक्षु इंद्रिय में स्वयं रूप रहता है, इसीलिए चक्षु इंद्रिय रूप का ग्राहक होता है। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय जो है उसमें गंध रहता है, इसीलिए वह गंध का ग्राहक होता है। यही यहाँ पर बताया गया घ्राणेन्द्रिय के बारे में। अब आगे जो है रसनेन्द्रिय के बारे में कहते हैं कि रसनेन्द्रिय का लक्षण बताया, रसोपलब्धि साधनम इंद्रियम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। जैसे वहां पर था ना गंधोपलब्धि साधनम इंद्रियम, ऐसे यहाँ पर है रसोपलब्धि साधनम इंद्रियम, माने रस की उपलब्धि, उपलब्धि का अर्थ में बता चुका हूँ, उपलब्धि माने प्रत्यक्ष, तो रस के प्रत्यक्ष का जो साधन इंद्रिय है, और जिह्वाग्रवर्ती, और जिह्वा के अग्रभाग में रहने वाला है, उसे हम रसनेन्द्रिय कहते हैं। यहाँ पर भी कोई भी वस्तु मीठा तीखा जो भी हो, उसका जो टेस्ट लगता है वो जिह्वा के अग्रभाग से ही लगता है, जिह्वा के बीच का भाग जो है या जिह्वा के मूल का जो भाग है वहाँ पर टेस्ट लेने का की क्षमता नहीं होती है, वो रसोपलब्धि का साधन नहीं है। रसोपलब्धि का साधन जो है वह जिह्वाग्रवर्ती ही होता है, जिह्वा के अगले वाले पार्ट में ही वो रहता है। इसीलिए जो चाटते हैं किसी भी चीज़ को, तो कहाँ से चाटते हैं, जीभ के अगले हिस्से से चाटते हैं, और चाटने के समय में आपको जो है स्वाद की प्राप्ति होती है, वो कैसे हो जाती है, क्योंकि वो जिह्वा के अगले हिस्से में ही जो है रसनेन्द्रियत्व रहता है। तो इस तरह से लक्षण बताया कि रसोपलब्धि साधनम इंद्रियम रसनम जिह्वाग्रभक्ति, रस उपलब्धि का जो साधन इंद्रिय है और जिह्वा के अग्रभाग में रहने वाला है उसको हम रसनेन्द्रिय कहते हैं। अब जैसे घ्राणेन्द्रिय को कहा था कि घ्राणेन्द्रिय जो है वह पार्थिव होता है, तो रसनेन्द्रिय क्या होता है, तो उसको कहते हैं कि तच्च अप्यम रसवत्वात्। यह जो रसनेन्द्रिय है यह पार्थिव नहीं होता, ये अप्य होता है। ये अप्य क्या चीज़ है, अर्थात यह एक जलीय द्रव्य है, अप कहते हैं जल को, तो अप्यम अर्थात जलीयम, जल से उत्पन्न होता है। तो यह जो रसनेन्द्रिय है यह अप्य है, अर्थात जल जलीय द्रव्य है। क्यों इसको जलीय द्रव्य माना जाता है? तो कहा कि रसवत्वात्, क्योंकि इसमें ये रसनेन्द्रिय में रसवत्व रहता है। रसवत्व की व्याख्या उसी तरह से कर लीजिए गंधवत्व की तरह, रस जिसमें रहेगा वह हो गया रसमान, और रसमान कौन है? रसनेन्द्रिय, और उसमें कौन सा धर्म रहेगा? तो रसमान में रसवत्व धर्म रहेगा, रसवत्व धर्म रसवत्वम, तस्मात पंचमी में रसवत्वात्। तो यह जो रसनेन्द्रिय है ये अप्य इंद्रिय है, माने जलीय इंद्रिय है या जलीय द्रव्य है, क्योंकि इसमें रसवत्व रहता है। फिर आगे कहते हैं रसवत्वंच रूपादिषु पंचसु मध्ये रसस्येव अभिव्यंजकत्वात् लालावत्। कहा कि इसमें रसवत्व इसलिए मानते हैं रसनेन्द्रिय में, क्योंकि रूप आदि जो पांच हैं, जिसको कि पहले भी मैंने बताया, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन पांचों में से यह रसनेन्द्रिय केवल रस का ही अभिव्यंजक होता है, माने रस का ही ग्राहक होता है, इसीलिए इसमें रसवत्व माना जाता है। और यहाँ दृष्टांत दिया लालावत। ये लालावत क्या है? तो लाला कहते हैं लार को, खाते समय में जो मुंह में लार बनता है उसको संस्कृत में लाला कहा जाता है, तो लाला की तरह। अब यहाँ ये समझना है कि मनुष्य के मुख में जब तक लार नहीं आता है तब तक किसी रस का स्वाद नहीं मिलता, अतः लार को रसानुभूति का साधन माना जाता है, किंतु वह मुख में परे रसवत द्रव्य के रूप आदि का ग्राहक न होकर उसके रस मात्र का ही ग्राहक होता है। तो जैसे लार रसवत द्रव्य के रूप आदि गुणों में अन्य किसी गुण का ग्राहक न हो करके रस मात्र का ही ग्राहक होने से रस का आश्रय होता है, उसी प्रकार रसनेन्द्रिय भी जो है रसवत द्रव्य के रूप आदि गुणों में से केवल रस मात्र का ही ग्राहक होती है, और अतः उसे भी रस का आश्रय मानना उचित है। रसवत्व का होना मतलब रस का आश्रय होना। तो इस तरह से लाला का दृष्टांत यहाँ पर दिया। अब चक्षुरिंद्रिय के बारे में बताते हैं कि रूपोपलब्धि साधनम इंद्रियम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती। रूप की उपलब्धि का जो साधन है और कृष्ण ताराग्रवर्ती, आँख में जो है तीन चीजें हैं, एक तो सफेद वाला भाग, दूसरा जो है थोड़ा भूरा भूरा वाला भाग बीच में जो रहता है बड़ा सा, और उस भूरा वाले बीच भाग में सेंटर में जो है ना थोड़ा सा एक काले कलर का जो पार्ट होता है उसको कृष्ण तारा कहते हैं। तो कृष्ण ताराग्रवर्ती वह जो चक्षुरिंद्रिय वही है असली चक्षुरिंद्रिय, वो सफेद वाला भाग नहीं है चक्षु, वो जो भूरा वाला भाग है वो नहीं है चक्षु, बल्कि उसके सेंटर में जो कृष्ण तारा होती है वही जो है चक्षुरिंद्रिय है। तो रूपोपलब्धि उस मोतियाबिंद जब हो जाती है ना, वहीं पर जब मोतियाबिंद होती है तो व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। तो चक्षुरिंद्रिय का उदाहरण ये लक्षण दिया कि जिससे रूप की उपलब्धि हो और जो कृष्ण तारा के अग्रिम भाग में रहता हो, अग्र भाग में रहता हो, वह चक्षुरिंद्रिय है। और यह क्या है? यह पार्थिव नहीं है, यह अप्य भी नहीं है, माने जलीय भी नहीं है, यह क्या है? तो तेजसम, यह जो है यह तेजस है। तेजस है मतलब तेज से उत्पन्न है, तेज का अर्थ समझिएगा बहनी अग्नि, मतलब ये अग्नि से जन्य होता है, इसलिए इसको तेजस कहते हैं। क्यों इसको तेजस माना जाता, जैसे पहले चर्चा हो रही थी उसी तरह से, क्यों इसलिए इसको तेजस माना जाता है कि रूपादिषु पंचसु मध्ये रूपस्येव अभिव्यंजकत्वात्, क्योंकि ये रूप आदि जो पांच हैं उनमें से रूप का ही अभिव्यंजक होता है, रूप का ही ग्राहक होता है, इसलिए इसको तेजस माना जाता है। माने जो जिसका ग्राहक होगा ना उसको वह उसी धर्म का माना जाएगा। तो चूंकि ये रूप का ग्राहक होता है इसलिए इसको ये जो है रूपवत्व इसमें मानना पड़ेगा, इसको तेजस मानना पड़ेगा। उदाहरण में दिया प्रदीपवत, जैसे दीपक जो है वह कहीं जलाएंगे तो किसी के रस को नहीं बताएगा, कि किसी और चीज को उसके को नहीं बताएगा बल्कि उसके रूप को ही बताएगा। तो जैसे प्रदीप केवल रूप को ही का ही ग्राहक होता है, उसके रस आदि का ग्राहक नहीं होता है, शब्द का ग्राहक नहीं होता है, उसी तरह से यह जो चक्षुरिंद्रिय है वह भी रूप का ग्राहक होता है। इसी तरह से त्वगिंद्रिय का लक्षण इन्होंने बताया, स्पर्शोपलब्धि साधनम इंद्रियम त्वक सर्व शरीर व्याधि। स्पर्श की जो उपलब्धि होती है, स्पर्श का जो प्रत्यक्ष होता है, उसका जो साधन इंद्रिय है वह है त्वगिंद्रिय। और यह त्वगिंद्रिय रहती कहाँ है, तो कहते हैं कि सर्व शरीर व्यापी, यह जो है पूरे शरीर में व्याप्त रहने वाली इंद्रिय है। शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर कि त्वगिंद्रिय न रहती हो। सर से लेकर के और पांव की उंगली तक जो है यह व्याप्त रहती है, इसलिए कहा कि सर्व शरीर व्यापी। और यह किस तत्व से उत्पन्न है, तो कहा कि तत्तु वायवीयम्, यह वायवीय इंद्रिय है, वायु से जन्य है, वायु से उत्पन्न है, वायवीय है। रूपादिषु पंचसु मध्य स्पर्शस्य अभिव्यंजकत्वात्, और यह जो है रूप आदि जो पांच विषय हैं, उन पांचों में से केवल स्पर्श का ही अभिव्यंजक होता है, अर्थात ग्राहक होता है। अंग संग सलिल शैत्याभिव्यंजक व्यजन बातवत। और इसमें दृष्टांत क्या दिया, कहा कि जब व्यक्ति नहा धोकर के निकलता है बाथरूम से, तो शरीर पर जो है पानी लगा रहता है, और जब पंखा चलाते हैं और पंखा की हवा चलती है तो ठंडक महसूस होती है, तो शैत्य ठंडक महसूस हो, ठंडक माने शैत्य स्पर्श, तो शैत्य स्पर्श का अनुभव होता है। उसी का उदाहरण दिया यहाँ कि अंग संगी सलिल, माने अंग में संगी है सलिल, माने अंग में युक्त है सलिल माने जल, और उस जल में रहने वाला जो शैत्य है माने शीतलता है, उसका अभिव्यंजक होता है कौन, तो व्यजन बात। व्यजन कहते हैं पंखे को, बात माने हवा, पंखे की हवा जो है वह अंग संगी सलिल शैत्य का ही अभिव्यंजक होता है, बाकी किसी दूसरे का अभिव्यंजक नहीं होता। इसी तरह से त्वगिंद्रिय भी जो है वह रूपादि का अभिव्यंजक नहीं होता, केवल स्पर्श का ही जो है अभिव्यंजक होता है। तो इस तरह से आज के पाठ में हम त्वगिंद्रिय तक पढ़ते हैं, फिर अगले पाठ में हम श्रोत्रेंद्रिय से चर्चा करेंगे।